نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آیتیں شروع کرنے سے پہلے انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ کو جو پچھلی دفعہ کے سبق سے سوالات ہیں ان کے اوپر بات کر لی جائے. جو پچھلا سبق تھا کافی ڈیٹیل میں ہوا لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو پھر بھی کنفیوژن دے رہی ہیں, تو ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کیونکہ ڈائریکٹلی یہ ہمارے عمل سے متعلق ہیں. بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اتنا دوپٹہ لے لیں یا اتنا لے لیں تو اتنا کافی ہے. دیکھیں میں آپ کو کوئی بھی جواب دے دوں اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے, اس سے کوئی چیز کافی نہیں ہو جاتی. اللہ کی آیات آپ کے سامنے ہیں, اب عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی اوپر ہے, مگر میں آپ کو نہیں یہ بات کہہ سکتی کہ نہیں آپ اتنا کر لیں گی تو اتنا کافی ہے, اتنا کر لیں گی تو بس ٹھیک ٹھیک ہے, بس یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ بعض کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی طرف سے وہ ہے مطلب مسئلے, تو ہم کیسے, میں نے اس کو بھی ایڈریس کیا تھا لاسٹ ٹائم. حجاب شوہر سے نہیں کرنا, حجاب تو غیر مردوں سے کرنا, شوہر کے سامنے آپ کو تو نہیں کسی نے کہا کہ حجاب کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض نے اور کئی چیزیں, یہ مجبوری وہ مجبوری, یہ عذر یہ عذر, تو دیکھیں مجھے نہ عذر دیں آپ کیونکہ میں تو کوئی جج نہیں ہوں آپ کی, نہ میں نے آپ کے کوئی فیصلے کرنے ہیں نہ کچھ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی عذر آپ دے رہے ہیں اللہ کی عدالت میں کیا وہ عذر قابل قبول ہوگا یا نہیں. جہاں پہ آپ کو جواب دینا ہے آپ وہاں کے لیے تیاری کریں نا, وہاں کے لیے سوچ لیں کہ آپ کو یہ جواب وہاں پہ کام آئے گا یا ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اور فوری طور پہ جلدی سے کوئی چیز کو ایک دم مجبوری بنا کے یہ میرا مسئلہ اور خود ہی سے امپوز کر لینا جبکہ آپ نے وہ کام نہ کر کے دیکھا ہو تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا, بعض لوگوں نے چہرے کے نقاب کا پوچھا ہے کہ بھئی وہ ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ہے یا کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں نے اتنی ریسرچ کی تھی, کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا جس کے پاس جائیں جو ایسے اسکالر ہوں جو کہ اس کے حامی ہیں تو وہ تمام دلائل لے کے اور وہ اس کی حمایت میں دیتے ہیں, جو اس کو نہیں سمجھتے ضروری وہ تمام دلائل لے کے کہتے ہیں نہیں یہ تو ضروری ہی نہیں. تو جس نے جو جس طرف ہوتا ہے وہ اسی طرف کے دلائل کھینچ تان کے ان کو پورا کر دیتا ہے. ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابیات جیسے آپ کو حضرت اسماء کا بتایا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی کا بتایا تھا کہ ان کے چہرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ اور یہ ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں اس طرح سے, لیکن وہ گھر کے اندر تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ان کے خالو ہیں ایک جگہ پہ ان کے بہنوں ہی ہیں. تو کہیں کہیں کوئی ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں مگر اس کے جواز بعض نے خود ہی بنا لیے اب کہ نہیں اس کا یہ جواب ہے یا اس کا یہ. جتنا حد تک میری اسٹڈی ہے, میں تو کوئی ایسی خاص نہیں, میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کی, جتنی حد تک میری اسٹڈی ہے جتنی حد تک میں نے اس کے اوپر بے شمار ریسرچ کی ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, قرآن کریم میں یا احادیث میں ہر چیز بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مینشن کیا ہوا ہے. اب جہاں تک چہرے کے پردے کی بات تھی, صاف صاف واضح یہ بھی کہا جا سکتا تھا قرآن میں یا حدیث میں کہ چہرے کا پردہ بھی सी तरह है, चेहरे को भी ढांपना है, या हदीस में ऐसा आ जाता, मगर ऐसा कहीं है नहीं। इसको इसलिए ये नहीं हम कह सकते फर्ज है, अगर किसी ने नहीं किया वो गुनाहगार हो रही है और वो ये बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा ये, मगर हाँ ये वो चीज है जो मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है। आप अमल देखें सहाबियात का, तो वो क्या अमल कर रही थी, और सबसे ज्यादा तो सबसे बढ़ के अमल है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, कि आप देखते हैं कि हजरत सफवान जब आते हैं तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी खुद रिवायत कर रही हैं, तो फरमाती हैं कि उन्होंने मुझे पर्दे के अकामात, पर्दे की आयात उतरने से पहले देखा हुआ था। इसका मतलब है कि उसके बाद जब से पर्दा हुआ फिर उसके बाद नहीं देखा, इसलिए पहचान लिया कि उससे पहले देखा हुआ था। और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन चार खवातीन में से एक हैं जिनको दुनिया की, पूरी इस दुनिया में चार औरतें ऐसी हैं जिनको दुनिया की तमाम औरतों के पर फजीलत हासिल है। वो कौन कौन है? हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा है, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का अमल ये है, इसके बाद फिर कोई गुंजाइश रह जाती है कुछ कहने की? फिर आपको मैंने बताया कि तमाम आइम्मा कराम चेहरे के पर्दे के कायल हैं, सिवाय इमाम अबू हनीफा के, वो फरमाते हैं कि फितने के हालात में तो जरूरी है, अगर फितने के हालात ना हो तो फिर छोड़ सकते हैं। अब आप खुद देख लें कि आज के हालात क्या फितने के हैं या नहीं। अब इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से ना हर एक चीज में खैर होती है, और इसमें भी खैर है। हो सकता है कि कभी किसी औरत को ऐसे हालात में बाहर भी निकलना पड़े, उसको कहीं जॉब करनी है, उसको ऐसा कुछ करना है, शौहर सर पे नहीं है या उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसको चारों नाचार अपने लिए कुछ करने के लिए कुछ हाथ पैर मारने हैं, तो वो चेहरे को खोल के चली जाती है। तो चलो एक उसको रुख्सत मिल जाती है, अगर फर्ज कर दिया जाता तो फिर हर औरत के ऊपर जरूरी था कि वो इसको फर्ज लेती। मगर बाहर कैफ जो सबसे बेस्ट अमल है वो यही है कि चेहरे को भी छुपाया जाए, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है औरत की बॉडी में। आप देखें औरत के अंदर, अगर आप पूरी बॉडी में से देखें, कौन सी चीज है जो कि किसी को पसंद करने के लिए दिखाई जाती है? चेहरा। थोड़ी कोई किसी लड़की को पसंद करने के लिए जाए तो ऐसे थोड़ी कहते हैं इसके हाथों की तस्वीर भेज दें, पैरों की तस्वीर भेज दें, क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। चेहरा औरत की ब्यूटी है, चेहरे में ही तो सारा हुसन होता है। और बाज चेहरे तो ऐसे होते हैं उन्होंने मेकअप नहीं भी किया हो तो वो इतने हसीन होते हैं कि इंसान की नजर नहीं हटती। तो चेहरा बाहर कैफ एक खूबसूरती है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे आप उसके ऊपर मेकअप करें या ना करें, ठीक है? तो इसलिए चेहरे का नकाब करना तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी बहुत अगर रुख्सत मिल सकती है तो वो भी वहां जहां पे चेहरे के ऊपर कुछ भी ना लगाया हो, कोई किसी किस्म, देखें इटसेल्फ चेहरा एक जीनत है, ऊपर से आप उसके मेकअप कर लें तो आपने तो यानी एक जीनत के ऊपर ही जीनत कर दी, जबकि कहा गया कि जीनत को नहीं दिखाना। अब आप चलें, अगर मैं कहती हूं कि अगर आप लोग सारे ये कहते हैं कि ठीक है नहीं हम चेहरे का पर्दा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वो नहीं, चलो कम से कम उतना तो करो जिसमें कहीं पे कोई इख्तलाफ है ही नहीं, किसी आलिम, किसी स्कॉलर, किसी के अंदर भी नहीं कोई इख्तलाफ। अब वो क्या है, जब बाहर निकलो सर से पैर तक खुद को कवर करो, नंबर टू जीनत का इजहार नहीं हो। अब कौन सी औरतें हैं जो ये डेयर करती हैं कि वो अपने चेहरे को बगैर जीनत के, बगैर किसी मेकअप के, बगैर किसी उसके, सिर्फ मुंह धो के और वो बाहर निकल जाए? मेकअप को तो सारियों को शौक होता है, कुछ ना कुछ तो लगा ही लेते हैं, और कुछ नहीं तो हल्की सी चलो लिपस्टिक, हल्का सा चलो ये काजल, हल्का सा चलो ये, जब हम हल्का हल्का करते करते ना शैतान कहां तक पहुंचा देता है, फिर छोड़ता नहीं है शैतान। जब आपने हल्का सा भी किया होता है तो वो भी तो होता है ना, फाउंडेशन ही चलो छोटी सी बेस लगा लेती हूँ, चलो ये कर लेती हूँ,
नहीं
कुछ भी नहीं कर सकते आप। देखें ये असल में अहकामात मुश्किल नहीं है, मगर हम इतनी दूर हो चुके हैं दीन से कि ये हमें इतने अजीब लगते हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, जैसे कि पता नहीं कोई बहुत ही किसी और प्लेनेट की बातें हो रही हैं, और जैसे पता नहीं हम पे क्या पाबंदियां लग गई हैं, हम तो चौक हो रहे हैं इतनी पाबंदियां लग गई हम पे। ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान है ये बहुत आसान है करने, ये आप यकीन करें, आप ये ना समझे कि मैं इसलिए कह रही हूं अच्छा ये तो करती होंगी इसलिए उनको आसान लगता है हमारे लिए मुश्किल है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आसान है। शैतान कहता है बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल, करने नहीं देता वो, हमने खुद अपनी जिंदगियों को मुश्किल बनाया हुआ है, जबकि हम अपनी गैदरिंग्स को सेपरेट नहीं करते, एक साथ मर्द औरतें बैठ जाते हैं तो अब कहते हैं कि अब कैसे हम हिजाब लेके बैठे, अब कैसे हम जीनत ना करें, तो फिर अलग अलग बैठो, अल्लाह ने जीनत से तो नहीं मना किया, अब सारी चीजों की हम पे पाबंदी लगी, किसने कहा पाबंदी लग गई, किसी ने भी नहीं कहा। मैंने आपको पहली बात जो बताई थी वो यही थी कि जीनत करना आपका हक है, डिस्प्ले करने के ऊपर सिर्फ पाबंदी है, जाहिर मत करो, जिन जिन लोगों के सामने जाहिर कर सकते उनके सामने कर लो, कोई हर्ज नहीं है, अपने घरों में हो आप करो। लेकिन हमें मसला तब होता है कि जब अच्छा ये क्यों रोक दिया कि हम, और फिर वो भी नहीं कि हम किसी पार्टी में जहां पे औरतें हैं वहां पे करने से मना किया, ये भी नहीं है, वहां के लिए भी करो, सब कुछ करो, आप मेकअप भी करो, आप बाल भी कटवाओ, आप बालों के ऊपर कलर भी कराओ, आप ज्वेलरी भी पहनो, आप सब कुछ करो, अच्छे कपड़े भी पहनो, किसने मना किया आपको। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि जीनत है ही ईमान वालों के लिए अल्लाह ने पैदा की, सब कुछ करो, सिर्फ इसका इजहार गैर महरूमों के सामने नहीं करना, दैट्स इट, ये बस एक्सक्लूडेड है, बाकी जितने हैं ये मर्द हैं जिनकी लिस्ट आ गई, औरतें सारी की सारी जो आपके हमारे करीब की होती हैं, जो हमारी दोस्तें होती हैं, जो हमारे रिश्तेदार ये औरतें होती हैं जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, सबके सामने करें आप, क्या मुश्किल है इसके अंदर। हर औरत तो बुरी नहीं होती कि हर एक औरत ऐसी है कि जिसके सामने नहीं कर सकते, आए हम पे तो ये भी पाबंदी लग गई, इसने कहा पाबंदी लगी और हर चीज ही हराम हो गई। अगर आपको गैर महरूमों के सामने डिस्प्ले करना इतना मुश्किल लगता है कि ये चीज इतनी मुश्किल है कि हम इससे कैसे रुके, इतनी बड़ी बात लगती है कि यही हर चीज लगती है कि कह दिया हर चीज ही हराम हो गई हमारे लिए, तो हर चीज कैसे हराम हो गई, आपको तो सिर्फ ये कहा कि गैर महरूमों के सामने ना करो डिस्प्ले, इसमें हर चीज के हराम होने की कैसे सवाल आ जाता। फिर आप देखें जो ये कह रहे हैं कि नकाब जो कर रहे हैं, कहते हैं कि हम इस मुल्क में अगर नकाब करते हैं तो यहाँ पे लोग और ज्यादा देखते हैं, पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपने करके देखा, आप करके देखें पहले फिर मुझे इसका जवाब बताएं, क्योंकि मैं करती हूं और मुझे पता है आज तक मैं कहीं ऐसी जगह नहीं गई जहां पे मैं एंटर हुई हूं तो लोग सारे काम छोड़ के तो मुझे ही देखना शुरू कर दें, बल्कि ये तो मुल्क ऐसा है इसमें तो देखते ही नहीं है, इसमें तो इतना मसला ही नहीं है, इसमें तो कोई नंगा भी फिर रहा उसको भी नहीं देखता, तो कुछ कुछ भी कर रहा तो उसको भी नहीं देखता, कोई कोई भी नहीं देखते। ये किसने आपको कहा कि सारे पता नहीं हम और ज्यादा वो हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा आपको कुछ है इस तरह का खौफ तो ऐसे नकाब ना लें जो कि बहुत ही आपको प्रोमिनेंट कर लें कि जिससे लोग खौफजदा हो जाएं कि कोई पता नहीं शायद चोर डाकू आ गया या कुछ है, आप अपने स्कार्फ को ही आगे कर लें, उसी को अपना नकाब भी बना लें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे कुछ लोगों को शायद ये नहीं समझ में आया कि ना महरम ससुराल के सामने औरत कैसे जाएगी, ससुराल में जो ना महरम मर्द होते हैं उनके सामने कैसे होगा, उन्होंने ये शायद समझ लिया मेरी बातों से कि ना महरम ससुराल के सामने शायद कोई पर्दा ही नहीं है। देखें जितनी लिस्ट आपको दे दी गई ना उसके अलावा सभी ना महरम है, और ना महरम चाहे घर के अंदर आए या बाहर हो वो ना महरम ही रहते हैं, ये नहीं होता कि कोई ना महरम घर के अंदर आ जाए तो वो कम ना महरम है और जो बाहर घूम रहे हैं वो ज्यादा ना महरम है। हाँ मैंने आपको जो बात बताई थी वो था एहतमाम, जब आप बाहर जाते हैं तो आप ज्यादा एहतमाम करते हैं क्योंकि कितनी देर आपको जाना है, टाइम कितना, बाजार है या कहीं और है, आप वहां पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सारी तरफ ना महरम है। जबकि घर के अंदर ऐसा होता है कि आपके घर में अगर आपके ससुराली रिश्तेदार आए हैं तो वहां पे आपके पास आप वो हर जगह तो नहीं बैठेंगे ना, आपका अपना कमरा भी होता है, आपका किचन भी होता है, फिर आप औरतों में भी जाके बैठ जाती हैं, फिर आप खाना भी वगैरह रख रही हैं, फिर आप ऐसे सर्व कर रही हैं, आप उसके अंदर फिर उस सूरत में जाहिर है हम इतने तकल्लुफात के साथ नहीं रह सकते कि अब हम पहले अबाया पहने फिर स्कार्फ पहने फिर उधर जा रहे हैं फिर स्कार्फ और अबाया उतार रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर स्कार्फ अबाया पहन रहे हैं। तो उसमें कोई बड़ी चादर आप ले लेते हैं अगर जो आपके घुटनों के नीचे तक होती है तो ठीक है, सही है, फिर आप अपनी जीनत छुपाएं। याद रखें मैंने एक ही तो बात आपको कही थी कि आपकी जीनत ना ही जाहिर कर सकते गैर महरमों के सामने, बस बात खत्म हो गई। उसके बावजूद वही वही सवाल, हम इयररिंग्स पहन सकते हैं कि नहीं जो हिजाब के बाहर हो? भाई कैसे पहन सकते हैं जिस वक्त के आप ये देख लें कि ये भी तो जीनत है। हम नोज पिन पहन सकते हैं, अब वो इतनी सी डॉट एक होता है वो नोज पिन अलग चीज होती है, एक बड़े बड़े नोज पिन्स होते हैं जिनकी चमक ही दूर से आप किसी के चेहरे को देते हैं सबसे पहले उसकी नोज पिन नजर आती है, तो आपका चेहरा पहले एक ब्यूटी है, इसी को छुपाना चाहिए था, चलो उसको नहीं छुपाया तो अब उसके ऊपर एक और ब्यूटी कर दी आपने, मेकअप तो पहना नहीं मगर वो लगा लिया। ये आप कहते हैं हाथ की अंगूठी भी तो पहन रहे हैं फिर नोज पिन पहनने में क्या मसला है? हाथ आपकी ब्यूटी नहीं है, चेहरा ब्यूटी है, बिल्कुल चेहरे में जो अट्रैक्शन होती वो हाथों की नहीं बात होती। अच्छा तो अब ये मैं बात आपको बता रही थी इसकी कि जब वो घर पे आए तो फिर आपको बड़ी चादर लेकर खुद को सही से ढांप कर फिर उसके बाद, क्योंकि आप आपने काम भी करना है, आपने चलना फिरना भी है, आपने अंदर जाना है, कभी जिधर दूसरे बैठे हुए हैं, कभी आप डाइनिंग टेबल पे चीजें रख रही हैं जहां पे कोई बैठे, कभी उठा रही हैं खाना, कभी अपने कमरे में चली गई हैं, तो इसमें इंसान कंफर्टेबल होता है, अगर जो भी कंफर्टेबल चादर आपके पास है वो ले लें, क्योंकि आप किचन में भी काम कर रहे हैं तो वो चीजें मोमर कोई जरूरत नहीं ऐसे कि पिन्ने भी लगाएंगे ये भी करेंगे वो भी करेंगे जैसे आप बाहर जाने के लिए करते हैं, मगर वो नामहरम फिर भी हैं और अब उनके सामने मेकअप करके नहीं चले जाना अगर आप चेहरे का पर्दा नहीं करती तो। अब आपने कहा कि ये अच्छा ये बात हो गई, और क्या सवाल है? हाँ ये सवाल है कि अगर कोई लड़की की तस्वीर भेजे रिश्ते के लिए और लड़की ने भी मेकअप किया और मेकअप वाली तस्वीर भेज दें, इसका भी जवाब वही है जो मैंने अभी दिया, क्या जीनत का इजहार हो सकता है? वो गैर महरम है उसके सामने तो इजहार नहीं हो सकता, चाहे उसके बाद उसके साथ शादी हो जाए, जब शादी हो जाएगी तब महरम होगा, अभी तो नहीं। ये भी सवाल आया, क्या मर्द औरत के लिए अलग घर ले क्योंकि जो है ना वहां पे अगर जॉइंट फैमिली है। अव्वल तो वैसे मैं आपको बताऊं सच बात है जॉइंट फैमिलीज का अब सिस्टम ज्यादा रहा ही नहीं है, कितने एक घर होंगे जिनमें जॉइंट फैमिली में देवर जेठ नंदे सब रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी के घर में है तो सास ससुर है और ससुर आपके महरम ही होते हैं, ठीक है तो फिर मसला क्या है? अब शाज़ो नादिर कोई ऐसा हो सकता है कि जिनके घर में हो, अब वहां पे भी फिर जाहिर है जब सबके सामने जाएंगे तो बड़ी चादर ही लेकर जाएंगे और जब अपने कमरे में होंगे तो फिर तो जाहिर है वो आपकी प्राइवेट स्पेस है। उसमें मैं ये कहूँ कि शौहर कम अज कम अगर वो घर अलग से नहीं भी ले सकता कोई मसला नहीं है, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अपनी बीवी के लिए प्राइवेट स्पेस उसको जरूर दे कि जहाँ पे उसका छोटा सा किचन हो, जहाँ पे उसका बेडरूम हो, जहाँ पे उसका एक बात हो कि जब जो उसकी प्राइवेट जगह हो ताकि वो वहां पे इजीली मूव अराउंड कर सके। अब ये किसी ने पूछा है कि देवर मौत है इसके बारे में नहीं आपने बताया, देखें एक बात समझ लें, पहले भी बताया था हम जो लफ्ज आता है ना इसमें हदीस में कि वो मौत है, वो सिर्फ देवर नहीं है बल्कि देवर जेठ नंदोई खाविंद के कजन्स ये सब उसमें आते हैं, यानी खाविंद की तरफ से जितने मर्द रिश्तेदार हैं बाले वाकिल सारे वो इसके अंदर मौजूद है, इसमें आते हैं। अब मौत क्यों कहा गया? मौत का मतलब ये नहीं कि अब आप उनके साथ हस्बैंड को भी कहें ये तो मेरे लिए मौत है इसलिए हम इनके साथ कट ऑफ कर देंगे और ना ही कभी आए तो उन मेहमान नवाजी भी नहीं हो और कुछ भी नहीं हो और बस उनको बुरा जाने। मौत से मतलब ये है कि देखें ये ऐसे रिश्ते हैं जिनका घरों में आना जाना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, और जब जिसका आना जाना बहुत ज्यादा घरों में होता है, जाहिर है हस्बैंड के भाई हैं या नंदोई हैं या कजन्स हैं या कुछ हैं, आना जाना तो रहेगा। अब जब आना जाना बहुत होता है तो घरों के अंदर औरतें ज्यादा वो भी इजी फील करती हैं, वो भी अपने यानी इतना ज्यादा अपने पर्दे का लिहाज नहीं करती, और उनके साथ ज्यादा चांस होता है कि उनके साथ बैठ के बातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, और कभी उनके साथ तन्हाई है, अकेले बैठे हुए हैं। तो याद रखें हदीस में आता है, जब एक मर्द और एक औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है। किसी भी गैर महरम मर्द के साथ अकेले में नहीं होना, चाहे आप किसी डॉक्टर के भी गए हैं तब भी किसी को साथ लेकर जाए। अकेले में होने में कितना चांस होता है कि कुछ बुराई आ जाए। शैतान तो हर एक के साथ है ना। देखें कोई इंसान कितना भी नेक पारसा हो, मगर शैतान हर एक के साथ लगा है। और आपने ऐसे कई वाकयात सुने होंगे, इन्हीं करीबी रिश्तेदारों के साथ औरतों को नुकसान उठाना पड़ता। इसी तरह नंद के बेटे हैं, जेठ के बेटे हैं, देवर के बेटे हैं, जो बालिग हो बड़े हैं, बड़े उनके साथ भी वो कोई महरम तो नहीं है। अब उनके साथ बड़ा इम्कान होता है अलहदगी में बैठ के बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ देवर को लेके नहीं आप कर सकते, ये सारे ही इसमें आ गए। अब किसी ने पूछा कि अगर अल्लाह ताला माफ फरमाए, किसी को अपने महरम रिश्ते से ही खतरा हो तो क्या है? देखिए औरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त एक डिटेक्शन का सिस्टम रख दिया ना, उसको फौरन पता चल जाता है कि कौन मेरी तरफ सही नजर से नहीं देख रहा। जाहिर है अगर कोई ऐसे किसी को कभी खदशा होता है तो उसको उससे दूर रहना चाहिए। फिर जी, शौहर के मामू और चचा महरम नहीं है। अच्छा जी, इस तरह ये बात आई थी कि कई जो जो जिन रिश्तों से पर्दे की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे बास लोग जो के यानी जैसे ऑटिस्टिक हैं, जो इस हालत को पहुंच गए कि उनको नहीं इतनी समझ है औरत कौन है, मर्द कौन है या क्या है, वो भी फिर उनके सामने भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपका पर्दा नहीं भी है तो। देखें एक बात तो थी ना, कॉमन सेंस की भी एक चीज होती है, इंसान को खुद भी समझना चाहिए कि देखे क्या किन हालात में क्या है। अब कोई ये भाई महरम रिश्तों के साथ क्या हम अपने बाप के साथ सही तरह से प्रॉपर तरीके से गले मिल सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके के साथ अगर अपने बेटे को अपने पास बुला लें, उसको प्रॉपर तरीके से हक कर लें, मतलब एक एक अप्रोप्रिएट तरीके से, तो क्या हो सकता है। नहीं देखिए ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, आपको खुद भी तो समझ होगी ना इतनी कि किस तरह से आपने मिलना। इंसान को खुद ही समझ आ जाती है। मसलन आपके बच्चे जब छोटे होते हैं, आप शौहर के साथ अकेले घर में रह रहे हैं, कुछ भी पहन लेते हैं कुछ, खुद ब खुद जब बेटे बड़े होने लगते हैं माँ को खुद हया आने लगती है, और आनी चाहिए, और खुद ही होता है कि नहीं मैं इतने डीप गले ना पहनूं, मैं इस तरह के टाइट कपड़े ना पहनूं कि अच्छा नहीं लगता, मेरे बेटे हैं, चाहे ठीक है बेटे ही हैं मेरे, लेकिन फिर भी मुझे हया आती, ये होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछने की जरूरत, उसके सामने हम कितना पहने, उसके सामने हम कितना पहने, अब एक एक इंच करके आपको लंबाई चौड़ाई तो नहीं बताई जा सकती ना। खुद की अपनी एक समझ, किधर चली गई हमारी हया, किधर चली गई है, क्या हमें ये बात नहीं समझ आती? अगर बाप है तो बाप से भी एक हया होती है बेटी की। ये अलग बात है कि अब अल्लाह ताला माफ करे कि हयाएं खत्म हो गई हैं, ना तो बाप से रही है तो ना बाहर वाले लोगों से रही है। इतनी टाइट जब जीन्स पहन लेंगे, इतने टाइट जब ब्लाउज पहन लेंगे कि एक एक बॉडी पार्ट नजर आ रहा है, एक एक बॉडी पार्ट का, यानी पहन के नंगी है, तो वो तो बाप के सामने भी नहीं पहन सकते, किसी गैर के सामने, किसी के सामने भी नहीं पहन सकते सिवाय हस्बैंड के। क्या खुद नहीं ये बात समझ आती? अब इसको बाप के सामने पहन लें कि नहीं पहने, बाप के सामने कितना लंबा पहने और कितना छोटा पहने, बाप के सामने क्या करें, ये कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने वाले। बेटे के सामने कितना करें, माओ को खुद नहीं समझ आती। हाँ ये है ठीक है, मेरे घर में मेरे बेटे हैं, मैं आटा गूंद रही हूं, मैं अपनी आस्तीनें चढ़ा के भी गूंद लूंगी, कोई मसला नहीं। मैं कोई सफाई का काम कर रही हूं, मैं अपनी शलवार कोई ऊंची करके भी कर लूंगी। अब ये कहो हो बाजू नजर आ गए और बेटा सामने है, इतना नहीं आप कर सकते, सतर आपका नंगा हो गया, नहीं, कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो इस चीज को जब हम बेटों के सामने भी हो, हमें खुद ही पता होता है कि ये वाले कपड़े इनमें मुझे जरा सही से रहना है, और ऐसे कपड़े में ना पहनूं, मेरे बेटे जवान हो गए, अब खुद हया आती है। अब ये भी क्वेश्चन है कि अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन है कि हालात आजकल बड़े खतरनाक हैं, ये हैं वो हैं, तो देखें क़यामत के करीब तो हालात और भी मुश्किल होते जाएंगे कि एक मोमिन के लिए आसान नहीं होंगे। ये मैं आपको बताऊं, ऐसे होगा अमल करना अल्लाह के दीन पे जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना, ठीक है। मगर फिर भी जो पकड़ेगा अंगारा उस वक्त, यानी अल्लाह के दीन पे चलेगा, फिर उसको इतना अजर मिलेगा जैसे सहाबा कराम को। आपको शौक होता है ना कि सहाबा के दौर में आप पैदा हो जाते, तो उन्होंने अंगारे ही पकड़े थे, उन्होंने उन मुश्किल हालात में ही दीन पे चल के दिखाया था। और टेस्ट ही यही है, अल्लाह ताला टेस्ट जरूर करेगा। और मैंने आपको बता दिया था कि हमारी हाँ औरतों के लिए ये आयत टेस्ट है, अल्लाह ने टेस्ट करना है। और हमारा क्या टेस्ट है, यहाँ पे तो कोई अबू जहल और अबू लहाब तो हमारे सर पे नहीं खड़े हुए, या यहाँ पे ये तो नहीं है कोई के भाई अल्लाह माफ करे, ऐसे हैं लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं है कोई एक मुसलमान है तो दूसरा काफिर है तो तीसरा मुसलमान है तो, चलो वो भी नहीं टेस्ट है, यही टेस्ट है ना, और क्या है। और फिर उसके बावजूद हम कहेंगे बस हर तरह के हालात इतने साजगार हो, लोग हमें हार पहनाएं, तो फिर ही हम कोई अहकामात पे अमल करेंगे। अगर आज ये हुकूमत कह दे कि जो जो औरत हिजाब करेगी और प्रॉपर हिजाब, जिसको हिजाब इस्लामिक कली हिजाब कहते हैं, उसको हिजाब कह रही है, ये स्काफ सर पे लेना हिजाब नहीं होता, हिजाब करेगी तो हम उस औरत को हजार हजार डॉलर देंगे, कौन सी औरत पीछे रहेगी। फिर उनके हस्बैंड भी मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो मना लेंगे किसी तरह। जहां पे अल्लाह की रजा की बात आ जाए वहां पे हम इतने रिलक्टेंट है कि हमें हर एक बात में समझ नहीं आती, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या। बनी इसराइल इस तरह सवाल करते थे, गाय के देखा कितने सवाल किए, अच्छा इसका रंग क्या होगा, अच्छा वो कैसी होगी, अच्छा अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रही क्या होगी, तो क्या हो गया उनके लिए, मुश्किल ही हो गया ना अमल करना। जैसे समझ आया उतना अमल कर लेना। आप कह रहे हैं कि जॉब पे क्या करें, अब भाई जॉब पे मैं क्या आपको बता सकती हूँ क्या करें, मैंने तो आपको इस्लाम के अहकामात बता दिए, अब आप खुद ही सोच लें क्या कर सकती हैं। अगर आप जिलबाब नहीं ले सकती तो कोई ऐसे गाउन ढीले सिलवा लें जो लंबे हों, जो कि जहां तक भी आप लंबे कर सकती हैं। अब देखिए मेरा आपको कह देना आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर देता, याद रखें मुझसे ओके कराना कोई माने नहीं रखता। मैं अगर कह दूं हानी जी आप ठीक है बिल्कुल, और आप ठीक नहीं है, ना मेरा ओके करना कोई माने रखता है और ना मेरा किसी को रिजेक्ट करना कोई माने रखता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अल्लाह के हां मेरी बात की मेरी से की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह का हुक्म ये है, इस पे आप कितना हद तक चल सकते हैं, किसकी क्या मजबूरी है, किसके क्या हालात हैं, किसकी जॉब कैसी है, कोई जॉब पे क्या कर सकता है और कोई क्या नहीं कर सकता, वो आपका और आपके रब का मामला है, आप खुद फैसला करें। ये रब का हुक्म है, मैं इसके अंदर किस तरह से अपने आप को करूं कि मैं इसके ऊपर चल सकूं। बाज लोग आपको कहेंगे जी इस्लाम तो इतना भी रिजिड नहीं है, इतना भी नहीं है, बस सादगी से रहो, हया वाला लिबास पहनो, कोई हिजाब वगैरह की जरूरत नहीं है, ये ना। तो देखें ये आयात बयानात है, खुल्लम खुल्ला है, आपके सामने है, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ से बाहर हो। और ये सूरा नूर है, और नूर से क्या होता है, रोशनी फैल जाती है, अंधेरे खत्म हो जाते हैं, शक दूर हो जाते हैं, आप गिरने पड़ने से बच जाते हैं, नुकसान उठाने से बच जाते हैं। हाँ? और आपको कोई भी कुछ कह रहा है, अगर बाहर पूरी धूप निकली हो पूरा दिन चढ़ाओ तो उसके बावजूद क्या आप लाइट जलाएंगे, लाइट की कोई अहमियत रहेगी नहीं, इसलिए कि सूरज की रोशनी काफी है। इसी तरह जब अल्लाह की आयात आ गई, उसके अहकामात आ गए, तो वो सूरज की तरह रोशन है, वो नूर है, उनके आगे ये लालटेने और ये मोमबत्तियां कुछ काम की नहीं है। जो लोग जला के खड़े हो जाते हैं, नहीं ये हम आपको बताएंगे कि ये तो ऐसी नहीं है, ये तो ऐसे नहीं, हमें किसी की बात सुननी नहीं, अल्लाह का हुक्म हमारे सामने है, आप कुछ और नहीं कर सकते, आप जिस जगह पे उससे तो एक कदम आगे उठाएं। जो लोग स्काफ करते थे वो आगे बढ़ के अब अबाया करना शुरू करें, जो अबाया पहनते हैं वो आगे बढ़ के अब नकाब के लिए कोशिश करें, जो अपने घरों के अंदर अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि आपके लिए ये चीजें करनी आसान हो जाएं, अपनी गैदरिंग्स अलग अलग करना शुरू करें, ये भी एक हिजाब होता है कि आप अलग अलग गैदरिंग करेंगे तो नई नजर पड़ेगी, थोड़ी है कि आपने आमने सामने ही जरूरी बिठा देना सबको। फिर आप ये देखें कि जब आप स्काफ नहीं लेते ना, सर को ढांकते नहीं, तो ये इतना मुश्किल लगता है जैसे कि पता नहीं मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा और जमीन फट जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ उस वक्त मुश्किल लगता है जब आप बाहर बैठे, वांस आप कर लेते हैं, जो करते हैं वो बताएं कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल भी नहीं, आसान हो जाता है। आप कहते हैं ये तो बड़ा आसान था, अब क्या लगता है, हाय अपने आप को कवर करना, जिलबाब लेके बाहर जाना, ओह ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं करूंगी तो ऐसे क्या होगा, फिर मैं वहां कैसे जाऊंगी, फिर शादी पे कैसे जाऊंगी। एक तो हमारी मुसीबत शादियों ने डाल दी है कि शादी इतनी बड़ी मुसीबत बन गई है ना, शादी पे हमारा क्या होगा, जैसे कि शादी सबसे बड़ा मसला है, शादी इतनी बड़ी चीज है। मुझे दुख पता है किस बात पे होता है, जब कोई शादी गुजर जाती है ना तो मैं ये सोचती हूँ, देखो ये 2-4 घंटे की शादी थी, ये गुजर गई, ये तो टाइम गुजर गया, अगर इसका गुनाह कहाँ तक जाएगा, इसमें अपनी जीनत को डिस्प्ले करके जितना गुनाह ले लिया और पता नहीं कितना अपने रब को नाराज कर दिया, वो वक्त भी चला गया जिसने आपको हंस हंस के कहना था बड़ी प्यारी लग रही हो, वो भी चले गए, उनको याद भी नहीं कि आप क्या पहने हुई थी और क्या थी, लेकिन आपने अपने ये काम करके अपने रब को कितना नाराज कर दिया होगा उसका अंदाजा है। वो 3 घंटे गुजर गए, वो तो गुजर ही जाने थे, चाहे आप हिजाब जिलबाब में होती, चाहे आप जीनत का इजहार कर रहे थे, वो तो गुजर जाने थे, लेकिन आपको मिला क्या, वहां से क्या लेके लौटे, रब की नाराजगी, क्या अफोर्ड कर सकते हैं हम ये। अल्लाह अकबर, आई डोंट थिंक कि हम अफोर्ड कर सकते हैं एक लम्हे के लिए भी कि हमारा रब हमसे नाराज हो, जिसके लिए ये बड़ी चीज है ना, उसके लिए ये हिजाब अबाए ये नथिंग नथिंग, और जिसके लिए रब की बात कोई अहमियत नहीं रखती, और ऐसे ही है जैसे मैंने एक ये फोन पे उठाया टेक्स्ट और पढ़ा और रख दिया, इसी तरह ये आयते हैं उनके ऊपर से, आए गुजर गए आए गुजर गए, ठीक है फिर उनके लिए ये भी सब चीजें कोई अहमियत नहीं लगती, तो जो पढ़ेंगे वो जो उनको अच्छी अच्छी लगेंगी मजा आएगा जिन आयतों में, हाँ ये बड़ी रेलिवेंट है, ये सबके नजदीक अच्छी है, ये सबके नजदीक अच्छा काम है, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ये मुझे आसान लगता है, वो तो कर लेंगे, और जो आसान नहीं लगता उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनके नजदीक उनकी पसंद नापसंद आसानी और मुश्किल ज्यादा अहमियत रखती है बजाय अल्लाह के हुक्म होने के। मसला यह है कि हमने ये बात नहीं समझी, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, ये सिर्फ धोखा है, ये शादियां ये सजावटें ये बनने सवरने ये पार्टियां ये सब धोखा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं इस बात को समझते, अभी तक नहीं समझ आई, ये जवानियां ये हुसन ये सब मांद पड़ जाने हैं, कितना दिखाओगे इनको, उसके बाद तो जाके अपने अल्लाह को फेस करना है कि नहीं, या यही बैठे रहना है आपने, यही शादियां और यही पार्टियां यही चलती रहेंगी, वो तो 2 घंटे बाद खत्म हो जाती है, ऐसे लगता है यहां पे तो कोई पार्टी हुई नहीं थी कभी, ऐसे हॉल खाली हो जाते हैं, सिर्फ इतनी देर के लिए और सिर्फ लोगों की नजरों में जचने के लिए कि वहां पे मैं अच्छी लगू, मैं अपने अल्लाह को नाराज कर दू, क्या टेस्ट है हमारा फिर, क्या टेस्ट रह गया हमारा, और फिर कितनी कदर है हमारे दिल में अपने रब की, ये इसी बात से पता चल जाता है, हमा कदरुल्लाह का कदरी, इन्होंने अपने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसे पहचाननी चाहिए थी, इन्होंने जाना ही नहीं अपने रब को। जो बंदा जान लेगा ना ये हुक्म किसका है, छोड़ो इस बात को कि क्या है ये आसान है ये मुश्किल है ये फलां है ये फलां, जिसने ये जान लिया ये हुक्म किसका है बताएं, किसका है, मेरा है या किसी फलसफी का है या यहाँ के प्रेसिडेंट का है, किसका है ये हुक्म, अल्लाह का है, वो जो रब है उसका है, जिसने मुझे पैदा किया उसका है, जो मेरे, मैंने कितना आपको पिछली दफा बताया, इसीलिए वो बात बताई थी ताकि आपको ये पता चले वो हमारा कितना हमदर्द है, हमसे ज्यादा हमदर्द है, हमसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, इतनी हमें अपनी खैर ख्वाही नहीं है जितनी कि उसको हमारी खैर ख्वाही, उसको पता है ये मेरी बंदी किस चीज में जाके मुश्किल में फंस जाएगी, वो उस मुश्किल से हमें बचाना चाहता है, और हम इतने ढीठ हैं कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लगता है जो मैं समझती हूं ना वो है सही, और जो अल्लाह ने कहा है वो आउटडेटेड है, और क्या कहूंगी, आउटडेटेड ही है ना, क्योंकि आज के वक्त में कैसे चल सकता है, इस मुल्क में कैसे चल सकता है, उस मुल्क में कैसे चल सकता है, यकीन करें जो पाकिस्तान में वो कहते हैं यहां पर हिजाब और अबाया ज्यादा मुश्किल है, आपके वहां पर तो आसान है देख लो, जो जहां है वो अपने बहाने लेके बैठा, जो यहाँ है वो कहते हैं आ हालात बड़े मुश्किल हैं यहाँ पे। तो ये मुझे बताएं, शादियों पे कौन से ऐसे हालात होते हैं जो इतने मुश्किल होते हैं, जो आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि आप अल्लाह के हुदूद को तोड़ें? और 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले कौन से ऐसे हालात थे जो जो कि इतने मुश्किल थे? हमने तो उस वक्त भी नहीं किया। और पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं कि जिनमें जो वहां पे नहीं करते फिर लोग, वहां पे तो कोई ऐसे हालात नहीं। असल बात हालात नहीं, असल बात हमारे मन की है। ये मन नहीं मानता क्योंकि ये ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, और अल्लाह ने बता दिया ये दुनिया ख्वाहिश पूरी करने की जगह नहीं है, जन्नत है ख्वाहिश पूरी करने की जगह। अल्लाह तुम्हारी सारी ख्वाहिशात वहां पे पूरी कर देगा, सब पूरी कर देगा, तुम्हें हूरों से ज्यादा हुसन दे देगा, तुम्हें वो लिबास देगा जितना मर्जी डिस्प्ले करना वहां पे। ए, तुम रीजे जा रहे हो यहाँ के लिए, तुम मरे जा रहे हो, एक एक पार्टी के लिए मरे जा रहे हो कि 2 घंटे के लिए भी मैं क्यों अपने आप को इस तरह इन अहकामात की पाबंद बनाऊं? मैं 2 घंटे के लिए भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं कर सकती, वो 2 घंटे ही है ना, 3 घंटे ही है ना, क्या इतने हमारे लिए वो इतने हमारी जान पे भारी हो जाते हैं कि मैं कैसे ना वहां पे बनूं समर। अल्लाह अकबर। अब आपने पढ़ लिया तो कम से कम, अब जब पढ़ लिया तो आगे एक स्टेप तो उठाएं। एक आप देखेंगे जब वो आप स्टेप उठा लेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं, मैंने क्यों इतना मुश्किल बनाया हुआ था। जो अब आए और हिजाब करना शुरू हो गए वो ये इन जीनतों को छोड़ दें कि जो जो जीनत करके अब बाहर जाके फिर वही बात तो वही हो गई, जिस्म को छुपा लिया और चेहरे के ऊपर जीनत कर ली। और जो ये सब कर रहे हैं ना वो अल्लाह से साबित कदमी की दुआ करें कि अल्लाह मरते दम तक इस पे कायम रहना, इसलिए शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो करते थे और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ देते हैं। एक चीज पहले छोड़ी, फिर शैतान एक चीज छुड़वाने पे कौन सा चैन से बैठता है, फिर उसके बाद दूसरी छुड़वाई, फिर तीसरी छुड़वाई, बस फिर सब कुछ ही छोड़ के बैठ गए। अब ये भी जो सवाल है कि खुले कपड़े पहन लें और ऊपर ना पहने, देखें जिलबाब है ही ऊपर का। अब हम, मैंने आपको पहले भी बताया था सूरह अज़ाब में जाके हम इसको देखेंगे और ज्यादा डिटेल में, वो है ही कपड़ों के ऊपर पहनने वाला। आप ये सोचते हैं कि मैं शर्ट कोई अपनी लंबी कर लूं पैरों तक तो वो मेरा जिलबाब बन गई, या गर्मियों में मैं नीचे कुछ भी ना पहनूं अबाया कोई ऊपर पहन लूं एज मैक्सी तो वो मेरा जिलबाब हो गया? नहीं, नीचे कपड़े होने चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये आप नीचे नंगे होके ऊपर नहीं ये पहन सकते। पूछ रहे हैं कि सहाबियात का अमल क्या था, मैंने आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल बता दिया, उससे बढ़ के तो कोई बात है ही नहीं। और आप किन में होना चाहते हैं, बेस्ट में या नहीं? जो हमारी रोल मॉडल्स हैं उनके मुताबिक चलना चाहते हैं या किसी और के? हमने तो शायद रोल मॉडल किसी और को ही बनाया हुआ है, क्योंकि हम तो जब सब चीजें छोड़ देंगे और जो हम कर रहे हैं वो तो इन रोल मॉडल्स की किसी तरह से भी पैरवी नहीं। उम्महातुल मोमिनीन को देख लें, सहाबियात को देख लें, क्या हमारे अमल वही हैं? अब ये भी सवाल है कि गैर मुस्लिम औरत के सामने पर्दा करना ये तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कब कहा है कि गैर मुस्लिम औरत के सामने पर्दा करना है? असल बात यह है कि देखें, आपको तफासीर में मिलेगा कि जो मुसलमान औरत है उसके सामने सिर्फ आप पर्दा खोल सकते हैं, तो इसलिए कि पुराने पहले जमानों में मुसलमान औरतें इस किस्म के काम नहीं किया करती थी जो कि अब उन्होंने फहाशी के अड्डे बना लिए हैं, तवायफी हैं, लड़कियों को लेके बेच देती हैं, या अल्लाह माफ करे ये होमोसेक्सुअलिटी मुसलमान औरतों के अंदर भी शुरू हो गई। इस वजह से अब मुसलमानों या काफिर जो भी ऐसी हैं जो जिनको जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिनके कैरेक्टर का कुछ पता है कि इस तरह का कोई मसला है, तो उनसे बचा जाए। डॉक्टर अगर ना कोई मिले और सिर्फ औरत डॉक्टर ना हो और डिलीवरी के टाइम आ जाए, जाहिर है एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो। ये सारे इतने सारे सवाल हैं और मेरे ख्याल में सारा आज इसी में ना हमारा टाइम लग जाए। फुल बॉडी वैक्स करवा सकते हैं, आपको मैंने बता दिया था 70 कितना है, 70 के आगे कोई नहीं देख सकता चाहे वो औरत है या मर्द, ये बताया था। ये है कि अगर कोट पहना हुआ है तो क्या लंबा कोट पहन ले इतना, ठीक है। अगर आपका कोट ही ऐसा है जैसे विंटर कोट है या आपका रेन कोट है या इस तरह है या वो जिलबाब के का ही काम दे रहा है तो ठीक है। अब वो जरूरी नहीं कि आपने एक ठप्पा लगवाना है कि मैंने अबाया पहना हुआ तो इसलिए मैं अब उसके ऊपर वो करूं, नहीं। अगर आपका कोट भी वो जिलबाब का ही काम है ऊपर सर से पैर तक है तो ठीक है। अच्छा, एक बात इसके अंदर है कि पहले तो हम ये फैसला कर लेना कि हलीम कौन है। अलीम सब तरह का इल्म रखने वाला कौन है, मैं और आप हैं या अल्लाह ताला है? सोच समझ के बताएं, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि शायद हम ही अलीम है, क्योंकि मुझे जितना पता है ना उतना किसी को क्या पता होगा, और नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह को भी नहीं शायद पता कि जो है ना एक हालात ऐसे आएंगे जिनके अंदर ऐसा कुछ होगा। और याद रखें, जब आप अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, मसलन है कि आप नहीं इस प्रॉपर हिजाब कर रहे, कभी भी अपने साथ अपनी दोस्तों को मिलाने के लिए, उनको अपना हम ख्याल बनाने के लिए उनके साथ ये बातें ना डिस्कस करें, हाँ ये तो ऐसे हो गया, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो सकता है किसी के दिल में अमल के लिए जज्बात पैदा हो रहे हो लेकिन आपकी बातों की वजह से वो हट जाए। इसमें ना ढिटाई करें, हम तो ये नहीं कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल, ये क्या है, ये ना करें, बल्कि आप नहीं भी कर सकते तो खुदा के लिए बोले नहीं, क्योंकि आपका बोलना जो है ना वो एक गुना को कई गुना बढ़ा देता है। बल्कि ये कहें, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानती, सारा कुरान कहता है वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, और आप कहते हैं हम जानते हैं और अल्लाह नहीं जानता। ये मत कहें ये ऐसा, ये क्यों ऐसा, या अल्लाह के अहकामात को क्रिटिसाइज मत करें, बल्कि अपने लिए दुआएं मांगे। और एक होमवर्क था जो कि मैंने नहीं आपको दिया था, अल्लाह ताला ने आपको एक होमवर्क दिया था, वो आपने किया? क्या होमवर्क था वो? होमवर्क था तूबू, तौबा करो, सब के सब तौबा करो, सब के सब। वो तौबा की थी, और तौबा क्या होती है? या हम वहीं के वहीं खड़े में हैं, खुद सोचें कि पिछला सबक जब आया उससे पहले में, पिछले फ्राइडे में और इस फ्राइडे में कोई फर्क है मेरे अमल में, या मैं वहीं की वहीं हूं? अगर वहीं की वहीं हैं तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा था? बस रट्टे मारे हैं तर्जुमे के। अगर जरा भी फर्क नहीं पड़ा मेरे अमल में तो क्या किया मैंने? सिर्फ हम इससे ना मुतमईन हो जाए, मैं तो हिजाब करती हूं ना, ये मैंने स्काफ लिया हुआ, ओ अबाया तो मैं पहन लेती हूँ, ये तो मैंने अबाया पहन लिया बस ठीक है। उसके बाद आपको कहा था कि आपकी ये जीनत इन मर्दों के अलावा किसी के सामने जाहिर नहीं हो सकती, फिर क्या आपने अपनी जीनत छुपाई, या वो वैसे ही डिस्प्ले हो रही है? और ये हुक्म आपके लिए कोई माने नहीं रखता। देखिए यहाँ पे एक हुक्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कह दिया गया कि आप हिजाब कर लें, अबाया पहन लें, कितने सारे हुक्म हैं, नजरों को झुकाने का, शर्मगाह की हिफाजत का, अपनी जीनत डिस्प्ले नहीं होगी, मगर जो खुद ब खुद हो जाए, ये नहीं कि आप कोशिश से कर रहे हैं, वो खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसको छुपा सकते ही नहीं है। एक होता है खुद करना और एक होता है जाहिर हो जाना, फिर अपने सीनों को कवर किया, चाहे आपने जिलबाब लिया तब भी, और चाहे आपने जिलबाब नहीं भी जब लिया घरों के अंदर, चाहे महरम रिश्तेदार भी हो, एक हद तक अपने सीने को कवर करना चाहिए। फिर आपने क्या अपनी जीनत इनके सिवा किसी और में जाहिर की या नहीं, इससे बचे या नहीं, एंड में तौबा की या नहीं? अगर तौबा की है और अपनी रविश बदलने के लिए कुछ स्टेप उठाए हैं तो फिर ही फलाह मिलेगी ना, वरना कामयाबी को तो भूल जाए फिर, वरना क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फलाह? फेलियर। क्लास में तो लोग आते नहीं इस वजह से कि टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें नंबर कम आ गए ना तो लोगों के सामने बेइज्जती होगी, और आखिरत में फेल होने का सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा फेलियर होगा। आपके लिए नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं सिर्फ सुना रही, मैं अपने आप को भी सुना रही। हम सबको इसकी जरूरत है, हम सब में कमियां हैं, हम सब से कोताहियां हो रही हैं, हमें सबको ही इसके अंदर एक स्टेप अहेड जाना है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।